पिछले अध्याय में आपने देखा कि मेहरा परिवार जयपुर पहुंच गया है। वेद एक बच्ची को ढूंढ रहा है, माया निराश है और बलवंत वेद को लेकर चिंतित है। सुधीर रुचिका से शादी नहीं करना चाहता और माया वेद को नशीला पदार्थ पिलाने की योजना बना रही है। वेद को दो लड़कियां खतरों से बचाएंगी। वेद मानवी को ढूंढता है और बलवंत वेद की सुरक्षा के लिए एक आदमी को लगाता है। रीना देखती है कि वेदांत अपने ख्यालों में खोया है और माया की योजना पूरी नहीं हो सकी। इस अध्याय में वेद और मानवी को पंचायत द्वारा जबरन शादी के बंधन में बंधवा दिया जाता है और उन्हें गांव से निकाल दिया जाता है। हर्ष उन्हें रात बिताने के लिए अपने घर में शरण देता है। वेद मानवी पर दोष मढ़ता है, जबकि मानवी वेद को अपनी बर्बादी का कारण बताती है। रेलवे स्टेशन पर वेद मानवी को छोड़ देता है। उसे बताता है कि उनकी शादी सिर्फ एक मजबूरी थी। वेद विदेश चला जाता है और 5 साल बाद लौटता है, जहां वो मानवी को अपने ऑफिस में देखता है। वो मानवी को अपनी बेटी अवनी की माँ के रूप में स्वीकार करने के बारे में सोचता है, लेकिन ये नहीं जानता कि अवनी उसकी बेटी है। वेद को ये एहसास है कि मानवी के साथ उसका रिश्ता उसकी सबसे बड़ी गलती थी। नाउ नेक्स्ट। जयपुर की हवेली में कदम रखते ही चारों ओर रौनक थी। मेहमान आते जाते, तैयारियों की चहल पहल और रंगीन कपड़ों की चमक हर ओर थी। मगर इन सबके बीच रीना का मन बेहद खाली था। उसकी मॉम और बहन अभी तक नहीं पहुंची थीं और उनकी गैर मौजूदगी उसे और भी अकेला बना रही थी। सुबह सुबह उसने मॉम को फ़ोन लगाया। मॉम, आप लोग अभी तक क्यों नहीं आए? मैं तो आपकी बहुत वेट कर रही हूँ। फ़ोन के उस पार उसकी मॉम की आवाज़ आई, बस बेटा, हम दोपहर तक पहुँच जाएंगे, थोड़े से काम में फंस गए थे इसलिए लेट हो गए। रीना ने ठीक है कह तो दिया, मगर उसके चेहरे की उदासी साफ झलक रही थी। असल में उसका मूड तो तब से खराब था जब से वो यहाँ आई थी। वेदांत में अब तक उससे ठीक से बात भी नहीं की थी। वो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे रीना कमरे में है ही नहीं। पिछली रात वो नीचे खाने तक नहीं गई थी और सबसे बुरा ये हुआ कि किसी ने ये तक नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं आई। सुबह भी वही हाल रहा। वेदांत ने कमरे में ही नाश्ता मंगवाया, चुपचाप खाया और बिना एक शब्द कहे बाहर चला गया। रीना अकेली भारी मन से कमरे में बैठी खिड़की के बाहर देखती रही। हवेली में लोग खुश थे, लेकिन उसका दिल खाली। उसे अपनी मॉम और बहन की और भी ज्यादा याद सताने लगी। इसी बीच दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रीना ने चौंक कर दरवाजा खोला तो बाहर सिया और किया खड़ी मुस्कुरा रही थीं। भाभी, हम अंदर आ जाएं? सिया ने शरारती अंदाज में पूछा। करीना ने हल्की मुस्कान दी और उन्हें अंदर बुला लिया। दोनों सोफे पर बैठते ही सिया बोल पड़ी, भाभी, आज शाम को आप क्या पहन रही हैं? हमें तो बहुत क्यूरियोसिटी है। करीना ने बिना कुछ कहे वार्डरोब की तरफ इशारा किया। हैंगर पर कंघी हल्की गुलाबी साड़ी को देखकर सिया की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, आप इसमें तो और भी प्यारी लगेंगी। किया ने तुरंत कहा, मैं तो गाउन पहनने वाली हूँ। सिया ने हंसते हुए जोड़ा, और मैं अभी तक कन्फ्यूज्ड हूँ, दो ड्रेसेस रखी हैं, अभी फाइनल करनी है। इतने में सिया का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और कहा, अरे मॉम का मैसेज है, उन्होंने बुलाया है, जल्दी आओ। किया उठते हुए बोली, भाभी, हम आपको लेने ही आए थे, चलिए साथ चलते हैं, मॉम ने हमें खास तौर पर कहा है कि आपको लेकर आए। ठीक है, चलो। रीना, सिया और किया जैसे ही मौली के कमरे में पहुंची, वहां पहले से ही हलचल थी। मौली के पास वेदिका और रूपा बैठी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच बड़े बड़े बॉक्स रखे थे, जिनमें गहने और कपड़े सलीके से सजाए गए थे। बेड पर रंग बिरंगी साड़ियां, हैवी गाउन और चमकदार ज्वेलरी की कतार बिछी थी। मौली ने तीनों को देखते ही कहा, आओ बेटा, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी, देखो ये गहने और कपड़े रुचिका को देने हैं। रीना ने धीरे से अपनी नजरें रूपा की तरफ उठाई। रूपा ने उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, रीना, तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें ही ये कपड़े और गहने रुचिका के पास लेकर जाने हैं। वैसे भी ये शाम का फंक्शन उसके लिए बहुत खास है और तुम्हारे हाथों से उसे ये चीजें मिलेंगी तो और भी अच्छा लगेगा। वेदिका, जो वहीं खड़ी थी, ने तुरंत जोड़ दिया, हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम तीनों जाओ, रीना, किया और सिया, रुचिका का मन भी अच्छा हो जाएगा। सिया ने थोड़ा हैरान होकर कहा, मगर मॉम, रुचिका तो अभी तक पहुंची ही नहीं है। मौली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, वो आ चुकी है, मेरी बात हो चुकी है उसकी मॉम से, उन्होंने ही कहा था कि गहने और कपड़े सब तुम लोग लेकर पहुंच जाओ। अब और बहस की गुंजाइश नहीं थी। तीनों ने कपड़े और गहने उठाए। रीना ने सावधानी से रुचिका का हैवी सेट अपने हाथों में लिया, जबकि सिया और किया ने उसके गाउन और बाकी ड्रेस संभाल ली। जैसे ही वे तीनों रुचिका के कमरे तक पहुंची और दरवाजा खटखटाया, अंदर से हल्की सी आहट आई, तभी वो अचानक खुला। सामने रुचिका की मॉम रानी शेखावत खड़ी थी। रानी जी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा आओ, मैं तो तुम सबका ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर सबसे पहले रीना को देखा और हल्के से सिर पर हाथ रख दिया, फिर सिया और किया को गले लगाया। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, बेटी की शादी की खुशियां और थोड़ी सी चिंता दोनों मिलकर। कमरे के अंदर चेयर पर रुचिका बैठी हुई थी। वो हल्के पिंक कलर की सादी ड्रेस में थी और उसका चेहरा हल्का सा उतरा हुआ लग रहा था, जैसे थकी हुई हो या सोच में डूबी हो। उसके बाल खुले हुए थे और वो आईने की तरफ देख रही थी। रीना ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, ये सब तुम्हारे लिए लाए हैं, थोड़ी देर तक रीना, सिया और किया वही रुचिका और उसकी माँ के साथ बैठी रहीं। सबने औपचारिक बातें की, चाय और कॉफी भी, फिर वे तीनों हंसते मुस्कुराते हुए उठ गईं। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अब वहां सिर्फ रुचिका और उसकी माँ रानी शेखावत रह गई थी। रुचिका जो अब तक चुपचाप चेयर पर बैठी थी अचानक झटके से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा साफ छलक रहा था। उसने अपनी मॉम की तरफ देखा और टूटते हुए स्वर में कहा, माँ मुझे ये शादी नहीं करनी। आप क्यों नहीं समझती? दादाजी को समझाते क्यों नहीं? रानी जी ने गहरी सांस ली, जैसे वो पहले से जानती हों कि ये सवाल सामने आएगा। बेटा देखो, हम सब करण के साथ तुम्हारी शादी के लिए तैयार थे, मगर उसने कहीं और शादी कर ली। उसमें हमारा क्या कसूर था? लेकिन माँ, रुचिका ने बीच में ही रोते हुए कहा, करण की जगह कोई और क्यों? और क्यों मैं ही हर बार समझौता करूँ? मुझे शादी करनी ही क्यों है? उसकी आवाज भर्रा गई, आंखों से आंसू बह निकले। रानी जी ने उसे पास खींच लिया और पलंग पर बैठा लिया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा ये सब बातें जो आज तुम कह रही हो ना, ये तुम्हारे दिल का दर्द है, मैं जानती हूँ। लेकिन ये बातें तुम्हारे मुंह से बाहर कभी नहीं निकलनी चाहिए। तुम्हारे दादाजी नहीं मानेंगे। वे मानते हैं कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का भी, उसका घर परिवार भी, सब हमारे स्टैंडर्ड के हैं। वहां जाकर तुम बहुत खुश रहोगी। रुचिका ने सिर झटकते हुए कहा, सच पूछो तो माँ, मुझे शादी ही नहीं करनी। मेरा मन नहीं है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। उसकी हिचकियां बढ़ने लगी, आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया था। रानी जी का दिल भी भराया, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूत किया। बेटी को अपने गले से लगाते हुए धीरे से बोली, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी खुशी से ज्यादा परिवार की इज्जत सोचनी पड़ती है। तुम्हारे दादाजी की बात टालना आसान नहीं है। मेरी इज्जत, मेरी परवरिश सब दांव पर लग जाएगी। बेटा मान जाओ, मेरी खातिर मान जाओ। ये कहकर रानी जी भी रो पड़ी। माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोती रहीं। कमरे के बाहर शोर शराबा और खुशी का माहौल था, लेकिन इस बंद दरवाजे के भीतर सिर्फ आंसुओं और मजबूरी की कड़वी सच्चाई थी।
प्लीज मेरी सीरीज पर कॉमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कॉमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें।